Hare Krishna, this class was given on the Srinath Dham Yatra on 19th January 2017 by myself, Prashant Mukundadas.
Kya hua Bhagwan Shri Krishna ke putra ka naam kya tha? Bhagwan Shri Krishna ke putra ka naam?
Pradyumna.
Pradyumna ke putra ka naam?
Anirudh.
Anirudh ke putra ka naam?
Vajranav.
Vajranav. To jo ye Vajranav hai, वज्रनाभ ये चौथे वंशज हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो शांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ जी को आदेश दिया कि वज्रनाभ जी आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों में भगवान को ढूंढिए, कहाँ है भगवान? वृंदावन में। तो 84 कोस वृंदावन, जिसे ब्रजमंडल कहते हैं, वो 84 कोस स्थान भगवान की दिव्य भूमि, जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, भगवान की दिव्य भूमि है। तो वहां पर वज्रनाभ जी ने 16 विग्रहों की स्थापना करी। तो कार्व किए भगवान के विग्रह और स्कल्पचर कर उनको बहुत सुंदर तरीके से सभी विग्रहों को बनाया। परंतु इसकी पुष्टि कौन करेगा कि ये विग्रह सही मायने में भगवान के जैसे प्रतिरूप है या नहीं है? तो जब उन्होंने ये बात की पुष्टि करनी थी, तो पांडवों के वंशज में परीक्षित महाराज की माता कौन है? उत्तरा। उत्तरा विराजमान थी। तो उत्तरा से पूछा कि मैया आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के इन 16 प्रतिरूप मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति ऐसी है जो भगवान कृष्ण की क्रिया मुद्रा या फिर भगवान के रूप को एज इट इज बताती हो, यथा रूप में? तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि मदन मोहन जी जो हैं, जिसको आपने नाम मदन गोपाल दिया है, ये मदन गोपाल के जो चरण है ये बिल्कुल साक्षात भगवान कृष्ण जैसे है, एज इट इज कोई भी नहीं बनी, पूरी की पूरी। कुछ के चरण मिलते थे। तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा उत्तरा जी ने, कि मदन मोहन, मदन गोपाल जिनका नाम पहले था, उनके चरण चिन्ह मिलते हैं और वक्ष स्थल जो मिलता है ये गोविंद देव जी का मिलता है, जिसको आपने गोविंद नाम स्थान स्थापित किया है, और एक जो चेहरा है ये गोपीनाथ जी से मिलता है। तो ये तीन अगर इकट्ठे दर्शन किए जाए तो सही मायने में भगवान श्री कृष्ण का एक बार में दर्शन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो और भी मूर्तियों को बनाया है, तो सभी मूर्तियां कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं? तो आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं कि जो ये मूर्ति है, जो ये विग्रह है, ये गोवर्धन पर उन्होंने स्थापित किया था, और एक है गरुण गोविंद मंदिर, वहां पर स्थापित किया था। एक श्री हरिदेव हैं जो कि अभी गोवर्धन परिक्रमा में है, वो भी वज्रनाभ जी ने स्थापित किए थे। तो ऐसे 16 विग्रह विराजमान थे व्रज मंडल में, और उसी के कारण, वज्रनाभ जी के कारण ही इस 84 कोस को व्रज कहा जाता है। तो उसमें से जो बताते हैं श्री गोपाल जिनका नाम था, ये बाद में श्रीनाथ जी कहलाए, तो बोलते हैं कि ये दो लीलाएं करते हैं ये जो भगवान जिनका हम दर्शन करने जा रहे हैं। पहला तो कहते हैं कि किस तरह से खड़े हैं भगवान, देखे किसी ने कैसे खड़े हैं? नहीं, नहीं उल्टा
नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे,
ये हाथ बंद है भगवान का, मुट्ठी ऐसे है और ये हाथ ऐसे खुला हुआ, ये ऐसे है
ऊपर ऐसे,
है ना? तो उसको देखा जाए तो भगवान एक गिरधारी के रूप में भी है, मतलब गिर को धारण किए हैं। और दूसरा है, बताते हैं जो ये संप्रदाय जो अभी इस टाइम सेवा करती है, बोलते हैं पुष्टि मार्गी संप्रदाय, जिनके आचार्य थे वल्लभाचार्य जी, तो वो वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि उक्षेपित हस्त कमलम, उनके उठे हुए हाथ जो है ना वो बुला रहे हैं सबको, मेरी ओर आओ। तो जितने भी व्रजवासी थे, जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े होते थे शिखर पे, तो सारे व्रजवासियों को बुलाते थे कि आओ आओ आओ। तो इसीलिए हमने एक पोस्टर बनाया था जो पूरे दिल्ली NCR इंडिया में घूमा, जिसमें लिखा था गोपाला इज कॉलिंग, है ना, गोपाल इज कॉलिंग। इसीलिए क्योंकि जो हाथ है जो ऊपर का उठा हुआ, उत्तिष्ठ हस्त कमलम, उठा हुआ हाथ जो है ना, ये बता रहा है कि आप आइए। और ये मुट्ठी में क्या है भगवान के यहाँ पर? तो उसमें बताया वर्णन क्या है कि भगवान की मुट्ठी में डिवोशनल सर्विस, कृष्ण प्रेम है। तो वो किसको देंगे? जो उनके पास बुलाने पे आएगा। तो कहते थे आओ आओ आओ, क्या लो, मेरा प्रेम ले लो। तो ये मुट्ठी में बांध के रखे, छोड़ते नहीं है, जो आएगा उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं कि भगवान के बुलाने पर हम सब जा रहे हैं। जय श्रीनाथ जी की,
जय
गोपाल जी की,
जय।
तो ऐसे वज्रनाभ जी के द्वारा जो स्थापित विग्रह थे ये सभी वज्रमंडल में पर विराजमान थे। पर ये हुआ था द्वापर युग के अंत के बाद में, पर कुछ समय निकल जाने के बाद, तकरीबन 4000 4500 साल निकल जाने के बाद, पूरा वन क्षेत्र ऐसा हो गया था, खंडित हो गया था। कौन सी मूर्ति कहाँ थी इतने समय में, बहुत वृक्ष आदि लताओं में सारी मूर्तियां सारी विग्रह मिट्टी में चले गए, कुछ पहाड़ों में दब गए, कुछ लोगों ने उठा करके कहीं छुपा दिए, तो सारे विग्रह मिल नहीं रहे थे। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पुनः वृंदावन आगमन करते हैं 1515 में, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ लीला स्थलियों को तो खुद स्वयं खोजते हैं, जो उनकी सबसे हृदय के स्तर नजदीक थी, जिसमें से इमली ताला एक स्थान है, राधा कुंड श्याम कुंड स्थान। परंतु कुछ लीला स्थलियां जो थी वो पहले से ही उनके गुरुदेव आचार्यों ने भी ढूंढी है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरुदेव थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो बंगाल से जब चलकर वृंदावन धाम में आए, तो गोवर्धन परिक्रमा जब वो कर रहे थे, तो एक स्थान पर उनको बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास लगी तो उनसे अब चला भी नहीं जा रहा था, तो एक छोटा सा बालक आया और उसने कहा कि हे यतिराज, यति मतलब होता है सन्यासी, यति का मतलब है सन्यासी, तो यह यतिराज मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, दुग्ध देना चाहता हूँ, थोड़ा दूध देना चाहता हूँ, आपको प्यास लगी है। तो यतिराज माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि हाँ मुझे दूध चाहिए, दूध दे दीजिए। जब उन्होंने दूध पिया तो कोई साधारण दूध नहीं था, उसमें दिव्य सुगंध, दिव्य उसके अंदर एक अनुभव हो रहा था उनको, इतना सुंदर कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, कहा कुछ नहीं, मैं तो साधारण बालक हूँ, व्रजवासी हूँ, लौट कर आऊंगा और अपना मटका लेने तभी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वो वापिस नहीं आया, और रात में स्वप्न में आकर के माधवेंद्रपुरी जी उसी वृक्ष के नीचे जब सो गए, तो उन्होंने स्वप्न में आके कहा कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, देखो मैंने तुम्हारी गर्मी शांत करी, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी मेरी गर्मी शांत करो। मैं जो हूँ ये गोवर्धन की कंदराओं के अंदर छुपा हुआ हूँ, मुझे खोज निकालो, कहाँ हूँ मैं। तो माधवेंद्रपुरी जी ने व्रजवासियों को बुला कहा कि गोपाल जिन्होंने मुझे दूध पिलाया वो यहीं गोवर्धन के कंदराओं में कहीं छुपे हुए हैं, और हमें उन्हें खोजकर निकालना है। तो कहा कौन से स्थान में है, तो देखा, कई दिनों तक ढूंढने के बाद पता चला एक स्थान है जहाँ गाय आकर के खूब सारा दूध दुहन करती है। तो जब उन्होंने उसकी खुदाई करी तो वहां से कौन निकल कर आए, श्री गोपाल जी निकल के, श्री गोपाल जी की। तो गोपाल जी को स्थापित किया गया, और आज भी वो मंदिर वही है, गोविंद कुंड के किनारे, कई भक्तों ने देखा है, वहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है, राघव पंडित जी की गुफा है, और श्रीनाथ जी जिन्हें गोपाल जी कहते हैं उनका भी वहाँ पर विग्रह स्थापित हुआ। और उसके बाद में गोपाल जी ने, भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी जी से कि इतनी गर्मी लगती है मुझे यहाँ वृंदावन में, मेरा मन करता है कि आप मुझे चंदन लेपित करें, और चंदन लेपित करने के लिए मैं कोई साधारण चंदन की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए मलय चंदन। तो उस मलय चंदन को लेने के लिए माधवेंद्रपुरी जी से कहा कि आप जाइए, और कहाँ जाइए, मलय देश है उड़ीसा के पास, वहां से लेके आइए। अब मलय देश जा रहे हैं कैसे, ट्रेन में,
पैदल।
आपसे कोई बोले, डिमांड करे स्वप्न में आके, भगवान तो हम पूरी कर पाते हैं, हमें तो लगता है सपना तो सपना, सपने की बातें झूठी होती है, सच्ची होती है। स्वप्न में आकर के भगवान ने कहा कि मेरे को चंदन चाहिए, और उनको लेने के लिए वो माधवेंद्रपुरी जी चल दिए। यू वॉन्ट टू गो, यस यू कैन, इट्स ओके। तो माधवेंद्रपुरी जी चल दिए वहां से, तो माधवेंद्रपुरी जी चलते रहे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। माधवेंद्रपुरी इस प्रकार के भक्त नहीं है जो कि भगवान की किसी भी इच्छा को नकार दें, और भगवान की इच्छा हमें गुरु के माध्यम से हमें प्रकट होती है। गुरु कोई चीज की आवश्यकता बताएं कि भगवान के लिए सेवा करो या ये सेवा करो, अभी जैसे हमारे मंदिर का निर्माण होने वाला है तो सभी भक्तों को सेवा दी जाएगी, तो कितने लोग उसमें डट करके अपने गुरु की आज्ञा मानकर, अपने अथॉरिटीज की आज्ञा मानकर उसमें सेवा करते हैं, तब पता चलेगा सही में हम भगवान की इच्छा के लिए। माधवेंद्रपुरी जी कहाँ वृंदावन, और कहाँ उड़ीसा, नंगे पांव पैदल चलते चले जाते, और हम गुरु जी की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं करते, इसीलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं करते। जब तक हम अपने निजी अनुभव निजी स्वार्थ के लिए सेवा करते रहेंगे हमें कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा आनंद प्राप्त हो पर भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति प्राप्त करने के लिए यथारूप में गुरु की आज्ञा अथॉरिटीज की आज्ञा माननी पड़ेगी, तभी सही मायने में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मादेनपुरी चलते हुए कई महीनों के बाद जब मलय देश मलय चंदन के लिए जा रहे थे तो एक स्थान पड़ता है रेमुना बालेश्वर के पास उड़ीसा देश में। तो जब वो वहां पहुंचे तो रेमुना में गोपीनाथ जी का विग्रह है, राधा गोपीनाथ, और वो गोपीनाथ जी रामचंद्र भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। भगवान रामचंद्र ने एक बार पत्थर के ऊपर सीता जी के लिए रेखांकित किया एक विग्रह को और उस विग्रह का नाम गोपीनाथ रखा गया। तो गोपीनाथ जी के भोग लगता है रोज खीर का भोग, उस खीर को कहते हैं अमृत केली। उस अमृत केली का भोग लगाया तो जो पुजारी थे उन्होंने 12 कुल्लड़ भोग लगाया, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन होते उसे कुल्लड़ कहते हैं, 12 कुल्लड़ भोग लगाया। लेकिन मादेनपुरी जी की इच्छा आ गई कि मैं एक कुल्लड़ खाना चाहता हूँ, ये मैं ले जाऊंगा अपने गोपाल जी के लिए और टेस्ट करके ऐसी खीर मैं भी गोपाल जी को खिलाऊंगा। पर एक बार उनके मन में आते ही उनको बहुत ही धिक्कार हुआ अपनी सोच पर। उन्होंने कहा ठाकुर जी के भोग से पहले उस भोग को ना देखना चाहिए ना सोचना चाहिए, अगर देख लिया सोच लिया तो वो अपवित्र हो गया, फिर भगवान उसे नहीं ग्रहण करते, ये मैंने क्या किया अपराध कर दिया। और तुरंत मंदिर के प्रांगण को छोड़कर बाहर एक कुटिया में जाकर सो गए कि अब तो मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए, थके हुए थे तो निद्रा आ गई और सो गए। थोड़ी देर बाद पुजारी ने सारे कुल्लड़ उठाए भोग लगाने के बाद और अपने कमरे में आकर के कुल्लड़ रख दिए और विश्राम करने लगे। स्वप्न में आकर गोपीनाथ जी ने कहा कि हे पुजारी, एक कुल्लड़ मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए रखा है। पुजारी ने कहा लेकिन भगवान स्वप्न में 11 कुल्लड़ तो मैंने भक्तों में बांट दिए, सारे कुल्लड़ मैंने बांट दिए। उसने काउंट नहीं किया, बोला सारे बांट दिए। तो भगवान ने कहा तुमने बांट दिए हैं लेकिन मुझे अपने भक्त का ख्याल है, मैंने उसके लिए एक कुल्हड़ छुपा के रखा है। कहाँ रखा है? कहा मेरे जो पीछे का भाग है उनके एड़ी के पास में मैंने अपने ड्रेस के नीचे छुपा के रखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और पुजारी दौड़ कर आए, ताला खोला और देखा सचमुच में एक कुल्हड़ भगवान ने छुपा के रखा। तो माधवेंद्रपुरी जी का जब उन्होंने ये दृश्य देखा उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, अश्रुपात हो रहा था, कुल्लड़ उठाकर सीधे बाहर आए और चिल्लाने लगे वो माधवेंद्रपुरी कौन है, इतने बड़े महान भक्त जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी ने आज प्रथम दिवस मेरे स्वप्न में आकर मुझे आदेश दिया है मैं आपकी सेवा करूं। तो उन्होंने तुरंत माधवेंद्रपुरी जी का नाम पूछा तो माधवेंद्रपुरी भी विश्राम में थे, उठ गए, बोले आपने मेरा नाम पुकारा मुझसे अपराध हुआ कोई? कहा नहीं अपराध नहीं हुआ है, आपके कारण आज मुझे भगवान के दर्शन हुए, आप महान भक्त हैं। और तुरंत उनके चरणों को पकड़ के विलाप करने लगे, कहा आप इतने महान हैं ये लीजिए। कहा मुझसे तो अपराध हुआ था। मैं तो ध्यान पूर्वक भगवान का अब भोजन देख रहा था भगवान को भोग लगने से पहले, मैं तो भोगने लगा उस भोग को जो भगवान को भोगने चाहिए था। तो माधवेंद्रपुरी के इस प्रकार कई बार विलाप करने पर दोनों पुजारी और माधवेंद्रपुरी जी एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और फिर वो अमृत के लिए खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और कहते हैं ऐसा प्रसाद मैं अपने गोपाल जी को भी गोवर्धन पर्वत में देना चाहता हूँ। पर थोड़े दिन समय बाद जब वो मलय चंदन से बड़ी बड़ी मलय पेड़ की लकड़ियां दोनों कंधे पर उठाकर, कितने हष्टपुष्ट होंगे, उठा करके बताते हैं कि बड़े ही बलशाली दिखाई देते थे मदनपुरी, और दोनों कंधों पर उठा करके वो मलय चंदन की लकड़ी लेकर वापस तैयार थे गोवर्धन जाने के लिए। सोचा रेमुना में रुककर फिर से खीर का प्रसाद ग्रहण कर लो, भक्तों को प्रसाद की थोड़ी सी वो रहती है ना, था गोपाल जी को टेस्ट याद रहेगा, जाऊंगा फ्लेवर वही रहेगा ना। तो उन्होंने रात्रि में जब वो रुके तो स्वप्न में आकर भगवान ने कहा तुम मेरी अमृत केली खाना चाहते हो, मैं अमृत केली तो दूंगा पर एक शर्त पर कि जो चंदन तुम ले जा रहे हो इसको उठाकर गोवर्धन तक जाना पड़ेगा। तुम ये क्यों नहीं करते कि इसको घिसकर यहीं मुझे लगा दो, क्योंकि मेरे गोपाल विग्रह में जिसे हम श्रीनाथ कहते हैं श्रीनाथ में और गोपीनाथ में कोई वर्क नहीं है, तुम यही चंदन लगाओगे तो मुझे शांति प्राप्त होगी। तो उन्होंने वही सारा चंदन लगाया और इसीलिए हर साल हम लोग भी चंदन यात्रा मनाते हैं। चंदन यात्रा शुरू होती है अक्षय तृतीया के दिन से और 21 दिनों तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो उन्होंने वहां चंदन लगाया, गोपीनाथ जी को जो ताप था वो शांत हुआ और उन्होंने अमृत केली का प्रसाद माधवेंद्रपुरी जी को दिया। अब देखिए एक भक्त का भगवान के साथ कैसा वार्तालाप है, माधवेंद्रपुरी लौट करके वृंदावन आते हैं और आकर के वो फिर से अपने भगवान को क्या देते हैं,
अमृत केली बना के,
अमृत केली बना करके भोग लगाते हैं। तो ये भगवान और भगवान के भक्त के बीच का है। कुछ समय बाद जब चेतन महाप्रभु आए तो उनको पता चला हाँ कि ये माधवेंद्रपुरी जी के विग्रह मेरे गुरु के गुरु जी के विग्रह हैं। तो उन्होंने वहाँ कूद करके पहली शाला जो गोवर्धन शिला थी उसको पकड़ करके आलिंगन किया कि वही स्थान है जहाँ पर मेरे गुरु के गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी बैठकर तपस्या करते थे। और यतिराज ने वहाँ तपस्या के लिए इसीलिए उस स्थान को अब क्या कहा जाता है, यतिपुरा। यतिपुरा नाम था लेकिन उसको नाम पड़ गया जटीपुरा।
अच्छा, यतिपुरा,
यतिपुरा था क्योंकि यतिराज ने वहाँ तपस्या की है। और यतिराज जो थे वो माधवेंद्रपुरी थे। तो कहते हैं कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने बहुत लंबा दंडवत किया गोवर्धन शिला को देखते ही। गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत। अच्छा, चैतन्य चरितामृत में आता है वृंदावन यात्रा में, गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला अलिंगिया हैला उन्मत। एक शिला को अलिंगन कर जो यतिपुरा में थी उसको अलिंगन करके हैला उन्मत, वो प्रेम में उन्मत्त हो गए कि ये कौन है, स्वयं ठाकुर जी हैं यहाँ। और वो रो रहे थे उस शिलाखंड को गले लगा करके। इसीलिए भक्त अपने घर में भी शिलाओं को रखते हैं, गिरिराज शिलाओं को, भगवान की गिरिराज शिला में और भगवान में कोई भेद नहीं है। और कुछ काल समय परिस्थितियों के बाद में महाप्रभु जब आए उसके बाद में वो स्थान पर श्रीनाथ जी का विग्रह जो था वो वहां पर था। और गोस्वामी गण जो थे उन्होंने भी उनकी काफी पूजा अर्चना करी। लेकिन कुछ समय बाद जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब एक ऐसा राजा हुआ जो जब अपनी सल्तनत में आगरा की राजधानी, दिल्ली राजधानी अभी है, पहले आगरा राजधानी होती थी, तो आगरा में जब वो अपने किले में खड़ा था तो उसने देखा क्या कि सामने एक बहुत बड़ी सी ज्योति जल रही है, जैसे इंडिया गेट में जलती है ना अमर जवान ज्योति, इससे भी अखंड ज्योति गोविंद देव जी के मंदिर में जलती थी। उसने कहा मेरे मुगल संतलत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि मेरे लाल किले से दिखाई दे रहा है वृंदावन, और इसमें कोई एक ऊंचा सा टीला है जिसपे ज्योति जल रही है, कहा इसको खंडित कर दो। अपने सेना गण को भेजा, कई सैनिक दौड़े और दौड़ करके मुगल संतलत के जो औरंगजेब थे उसकी कहे अनुसार जब चले तो आप बताइए आगरा से वृंदावन घोड़े पे आने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा?
सुबह की शाम हो जाएगी।
हाँ जी,
दो चार घंटे, पाँच घंटे,
पाँच घंटे, छह घंटे, एक दिन,
एक दिन,
एक दिन, दो महीने लग गए, कोई घोड़ा पहुंच ही नहीं पा रहा था। दो महीने लग गए, एक भी घोड़ा पहुंच नहीं पा रहा था। तब घोड़े के सामने सैनिक ने कहा न यहाँ का रखा न वहाँ का रखा, हे खुदा ये क्या किया, ए अल्लाह मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे तुझसे कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने औरंगजेब की बात को ना मानकर के वापिस चला गया तो मेरी गर्दन कट जाएगी, तो इसलिए हे अल्लाह ताला तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी सेवा कायम करने दो, पूर्ण करने दो। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से ही वो वापिस सैनिक अपने घोड़े पे बैठा और घोड़ा चलने लगा। तब वो पहुंचा तो उसने कहा कि इस मंजिल में भगवान कहाँ है, आकर के पूछा अल्लाह कहाँ रहते हैं, तो भक्त ने कहा कि दूसरी मंजिल में। कहा ठीक है, दूसरी मंजिल को छोड़ करके ऊपर की सारी मंजिल तोड़ दो। कहा भैया अल्लाह से पंगा लिया तो भैया वापिस नहीं जाऊंगा। अल्लाह से पंगा लिया तो वापिस नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, कृष्ण कहो, एक ही है। तो उन्होंने कहा अल्लाह से पंगा नहीं लूंगा। तो औरंगजेब जो थे वो उनसे लेकर के सारे जो राजपूत थे वो बड़े बुद्धिशाली थे, उन्होंने औरंगजेब का बड़ी तारीफ करी। कहा औरंगजेब जी आपके जैसा युद्ध करने वाला कोई देखा ही नहीं हमने, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप साम्राज्य के असली सम्राट होने योग्य हैं पूरे हिंदुस्तान के। तो इस तरह से कहा तो उसने कहा अपनी सेना से कुछ भी करना लेकिन राजपूत लोगों को कभी भी टच मत करना। तो इसीलिए जयसिंह जी जो थे उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि अकबर जब थे तो उनके पूर्वज भी जयसिंह ही कहलाए हैं, लोगों के नाम अलग है लेकिन जयसिंह उनकी परंपरा के सब में टाइटल है जयसिंह। तो जो उनके तीन पुष्ट पहले जयसिंह थे उन्होंने काफी मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर बनने के लिए अकबर के राजकोष में मिलकर के, राजकोषी से मिलकर के काफी मंदिर निर्माण किए। तो जयसिंह जी के जो वंशज थे उन्होंने कहा कि हमारी हमें ये करना चाहिए कि उन विग्रहों को कहाँ लाना चाहिए, राजस्थान में लाना चाहिए। लेकिन अब जब ये बात चली कि राजस्थान में भगवान जाएंगे, तो सभी भक्तों को जब पता चल जाए, जैसे मान लीजिए द्वारका मंदिर में ऐसा ऐलान हो जाए कि द्वारका मंदिर पुराना मंदिर अभी चेंज होकर नया मंदिर निर्माण हो रहा है, पुराने वाले विग्रह जिनकी पूजा अर्चना होती थी वो भक्तों को दिए जा रहे हैं अपने अपने घर ले जाने के लिए, तो सबके मन में आएगा कि नहीं आएगा, हम ले आते हैं, हम ले आते हैं। तो जब पता चला वृंदावन से भगवान चलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सभी भक्तों ने सोचा, तो जयसिंह जी ने सोचा कि गोविंद देव जी मुझे मिल जाए। उनकी बहन जो थी, उनके हस्बैंड का नाम था गोपाल सिंह, करौली में जो रहते हैं, उन्होंने सोचा मुझे मदन मोहन जी मिल जाए। और इसी तरह से मेवाड़ जो था, जो मेवाड़ जो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, मेवाड़ में एक राजकुमारी रहती थी, सिंहनाद एक स्थान है, उस स्थान में एक राजकुमारी रहती थी जो कि यही जयसिंह की फैमिली की थी। उनकी इच्छा थी कि श्रीनाथ जी, गोपाल जी मुझे मिल जाएं, जिनके हाथ ऐसे गिरधारी रूप में जो है वो मुझे मिल जाएं। ऐसी सभी भक्तों ने इच्छा रखी और देखिए भगवान की लीला, सब वैसे 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 गए। राधा गोविंद देव जी, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, इन तीनों विग्रहों को राधा कुंड, श्याम कुंड, काम्यवन से होते हुए ले जाया गया कहां, जयपुर और करौली। वो कथा अलग है, हम पहले चर्चा की है। लेकिन जो ये विग्रह हैं श्रीनाथ जी के, ये विग्रह वो हैं जिनके सामने औरंगजेब को आकर भी नतमस्तक होना पड़ा। औरंगजेब ने कहा कि भैया ये तो खतरनाक बात है, महलों के अंदर के विग्रह चले गए, ये छाती चौड़ी करके गोवर्धन पर्वत पे खड़े हैं, इनको अभी तक नहीं तोड़ा गया, इनको मैं तोड़ता हूँ। वो कई बार प्रयास करता रहा लेकिन एक शिला पर पांव तक नहीं रख पाया गोवर्धन की, और उसी समय से उस मुगल संतत का पतन शुरू हो गया। सारी मुगल सम्राट सेनाएं हर जगह हारने लग गई और जिस जिस देश में वो युद्ध करने जाते थे वहां हारने लगे। तब औरंगजेब ने कहा अब तो मैं भी मर जाऊंगा, लगता है यही अल्लाह की इच्छा है और यही अल्लाह है। और औरंगजेब ने उस श्रीनाथ जी विग्रह के सामने नतमस्तक किया। और साथ में अकबर के द्वारा दिया गया एक हीरा, अकबर ने जो हीरा दिया था वो हीरा औरंगजेब ने किसको दिया, श्रीनाथ जी को दिया, जो आज भी उनके चिन्ह जो मेरे में विराजमान है, अकबर के द्वारा दिया गया चिन्ह, तो वो आज भी विराजमान है वो चिन्ह। ये इस बात का स्थापित करता है कि मुगल संतनत आपके थोड़ी के नीचे हार गई, नतमस्तक होती है, तो आप हो असली ठाकुर जी। ठाकुर मतलब हेड, हम ठाकुर नहीं है, किंग बन जाए या राजा बन जाए पर हेड है आप श्रीनाथ जी। ऐसा कह के उन्हें श्रीनाथ जी के सामने नतमस्तक हो गए। तो भगवान के श्रीनाथ जी विग्रह जो है उनको आगरा से होके ले जाया गया। आगरा में एक मंदिर है जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर है। आगरा से होते हुए भगवान मेवाड़ राजधानी में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे सुंदर विग्रह की अनेकों लीलाएं हैं। मैं कुछ सोच रहा था कि क्या क्या इसमें बोल सकते हैं, भगवान के विग्रह के बारे में सुन सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो भगवान श्रीनाथ ने 32 दिनों तक यात्रा करी। 32 दिन लगे उनको कहाँ जाने में, मेवाड़ जाने। भगवान को कितने दिन लगे, 32, और भक्तों को कितने दिन लग रहे हैं,
12 घंटे।
12 घंटे भी नहीं लग रहे, सब सो रहे हैं। कहाँ हरि बोल। अरे हमारी सीट किधर, हमारी सीट किधर, हमारी सीट कहाँ सोएंगे, अरे ठंड में जाएंगे, एसी का डब्बा नहीं है। भगवान 32 दिनों में पहुंचते हैं और भक्त जो है वो 12 घंटे में भी आराम से जाना। हमें तो क्या करना चाहिए, जब तक भगवान तक ना पहुंच जाए कीर्तन करते हुए जाना चाहिए, है ना। ये है भगवान की दर्शन करना। इस तरह से माधवेंद्रपुरी के गोपाल विग्रह है। महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुगल संतलत से क्या किया, बहुत ही ज्यादा युद्ध किया। जिस तरह जयसिंह जी युद्ध के लिए खड़े थे, महाराणा प्रताप भी खड़े हुए। और कुछ समय बाद वल्लभाचार्य नाम के एक भक्त हुए हैं जो कि दक्षिण भारत के थे। उन्होंने एक मार्ग चलाया जिसका नाम है पुष्टि मार्ग। तो जब आप जाएंगे कल श्रीनाथ जी में, नाथद्वारा में, देखेंगे भगवान के भक्त तिलक लगाते हैं ऐसे यू फॉर्म में, लाल रंग का तिलक लगाते हैं, है ना। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी मार्ग है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या सिखाता है, पुष्टि मार्ग कहता है सर्व भावन भावनेयो, जिसकी जैसी भावना हो उसको वैसे ही भगवान की क्या करनी चाहिए, सेवा। सर्व भाव सना संभाव, जैसे भी आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कोई वात्सल्य रूप में करना चाहता है तो उसको गोपाल जी नजर आएंगे, मेरे लड्डू गोपाल, कोई उसको गोपी प्रेम में माधुर्य भाव में करना चाहता है तो उनको क्या नजर आएंगे? गोपीनाथ, श्रीनाथ। श्री मतलब भी राधा रानी होता है और नाथ मतलब कि जो जितने भी अनाथ दिल्ली में घूम रहे हैं ना, दिल्ली एनसीआर में कोई माई बाप नहीं है कहाँ जाए चिंतित, वो जितने भी इस हिंदुस्तान में इस पूरे वर्ल्ड में घूम रहे अनाथ, उन सबके नाथ जो है असली पति असली स्वामी वो कहाँ विराजमान है? मेवाड़ उदयपुर में विराजमान। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1469 ईस्वी में होता है और उनकी कम उम्र में ही तीर्थ यात्रा में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उनके एक भाई और एक माँ उनकी सेवा करते हुए वल्लभाचार्य जी ने सब कुछ त्याग करके ग्रस्त जीवन में थे और वो माया वृंदावन की ओर आए और यहाँ पर लीला स्थलियों को खोजना प्रारंभ किया और कई जगह पर उन्होंने लीला स्थलियां खोजी वल्लभाचार्य जी ने। सबसे खास बात क्या थी, वल्लभाचार्य जी के पास में एक लड्डू गोपाल विग्रह थे और उनको वो अपनी छाती के आगे रखते थे और लड्डू गोपाल जी से वो वार्तालाप करते थे और लड्डू गोपाल उनको बोलते थे लेफ्ट चलो राइट चलो, लेफ्ट चलो राइट चलो, और वो बोलते थे यहाँ से 7 कदम पे राधा कुंड है, तो वहां पहुंच जाते थे। मतलब उनके धाम गाइड प्रशांत मुकुंद प्रभु नहीं थे, उनके धाम गाइड कौन थे? गोपाला गोपाला, तो वही गोपाला इज कॉलिंग यू, उन्होंने गोपाल जी ने आपको बुलाया है। और कहते हैं कि ऐसे जो माधवेंद्रपुरी थे उन्होंने कई शिष्य भी बनाए अपने और पूरे उन्होंने अपना ज्ञान बनारस से प्राप्त किया। बनारस से प्राप्त करके वल्लभाचार्य जी ने जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे, वल्लभाचार्य जी ने 84 वल्लभाचार्य पीठ स्थान बनाए जिसमें से एक स्थान श्रीनाथ जी भी है ना। तो ये वल्लभाचार्य जी ने नहीं बनाया, बाद में उनके पुत्र ने बनाया था जिनका नाम था विठल नाथ और वही विठल नाथ जी इस विग्रह को वृंदा गोवर्धन से महाराणा प्रताप के संरक्षण में मेवाड़ तक लेके आए थे। विठल नाथ जी, विठल नाथ उनके बेटे थे और विठल नाथ जी के आने की वजह से विठल नाथ जी ने संगीत में महारत हासिल की थी और उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है श्रीनाथ जी में कि भगवान को 8 बार भोग लगेगा, अष्ट पहरीय भोग, 8 प्रकार की लीलाएं होती है, तो 8 बार भगवान को भोग लगेगा अष्ट पहरीय लीलाओं के अंदर।
सॉरी,
वी आर वेटिंग फॉर यू,
सॉरी एडजस्टमेंट,
नो प्रॉब्लम, वी आर एट योर सर्विस। ना ना, we are enjoying your visit. अष्टपहरी लीला में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने इस बात को स्थापित किया कि भगवान को 8 बार भोग लगना चाहिए क्योंकि भगवान का रूप है गिरधारी का। भगवान ने जब 7 दिन 7 रातों तक पर्वत को उठा के रखा तो 8 बार दिन में भोजन खाते हैं, 7 दिन में 8 बार 1 दिन में खाते हैं, तो 7 दिनों तो नहीं खाया तो कितना हो गया?
56
तो 56 भोग भगवान को लगना चाहिए। तो इसलिए सारे लोग वहां जाके हैरान रह जाएंगे कि बड़ा बड़े लड्डू, बड़े बड़े माठे और बहुत ही बढ़िया चाट पकौड़ी मिलती है वहां पर। मैंने ऐसा सुना है भक्ति विकास महाराज जी से और सारे भक्तों से, और हर एक मौसम के हिसाब से भगवान का शीत उपचार होता है। शीत उपचार, शीत उपचार मतलब सर्दी में सर्दी के कपड़े, गर्मी में नेट के कपड़े पहनेंगे भगवान, फाउंटेन्स लगेंगे, गुलाब लगेगा भगवान को, सर्दी में हीटर लगेगा, अंगीठी लगेगी भगवान पे, तो शीत उपचार भगवान का वहां पर होता है। और जो इनके हेड पुजारी होते हैं उन लोगों को तिलक्यात बोला जाता है, तिलक्यात, तिलक लगाते हैं ना, जो तिलक्यात ऐसे याद रख सकते हैं, तिलक्यात बोला जाता है। और भगवान जो है वो उनके कई चिन्ह बनवान के शरीर पे बने हुए हैं, जैसे भगवान के मस्तक पर एक तोता बैठा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे, वैसे इतने देर तो देते नहीं है।
अच्छा,
रोज 20,000 विजिटर होते हैं डेली, 20,000 विजिटर्स एवरी डे, जब हमारे ये 4,000 नहीं जाएंगे तब अलग से, तो अब हम 24 हो जाएंगे, 20 में 4 प्लस हो जाएंगे। तो भगवान के मस्तक पे तोता विराजमान है, वो तोता चिन्ह बताते हैं विठलनाथ जी अपने शास्त्र में कि वो सुखदेव गोस्वामी है जो कि सदा ही भगवान की कथाओं को भगवान से सुनकर के परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। और भगवान के चरणों में एक सर्प है जो कि अनंत शेष का वर्णन करते हैं, और एक दो गाय हैं भगवान के उसी में, एक स्लैब है उसके अंदर भगवान का विग्रह है, तो उसमें नीचे दो गाय हैं, गाय धर्म और भूमि को स्थापित करते हैं। एक शेर है जो कि पार्वती जी का अपना पर्सनल वाहन है, दुर्गा का वाहन शेर, वो ये कहता है कि जो लोग कथा सुनने नहीं आएंगे, कथा सुन के नहीं आएंगे ट्रेन में, अरे सच में हंस रहे हो आप? जो लोग कथा सुन के नहीं आएंगे उनको भगवान का दर्शन
नहीं होगा।
जो श्रीनाथ जी की कथा सुन करके आएंगे, भक्तिमय नेत्रों से देखने आएंगे, उनको ही वो शेर जो है भगवान का दर्शन करने देगा, ऐसा वर्णन किया गया है। और आगे कहते हैं कि जो अभक्त आते हैं वो भगवान को नजर लगा देते हैं, और भगवान इतने प्रेमी हैं, उनको अगर कहो प्रेम से हमारे साथ चलो तो गोपाल है ना, जैसे बच्चे को चॉकलेट खिला के कोई किडनैप कर लेता है, गोपाल जी किडनैप हो जाते हैं। इसलिए वहां पे दर्शन कई बार खोला जाता है, कई बार बंद किया जाता है। तो कई बार होता है जैसे बर्तन बंद हो गया तो भक्त आवाज लगाते हैं नीचे वाले, क्या बोलते हैं? गोपाला। क्या बोलते हैं?
गोपाला।
जो दर्शन के लिए आवाज निकालेंगे तो क्या होता है, पुजारी फिर खोल देता है, कह रहे लो दर्शन। फिर 10 मिनट दर्शन होते हैं, फिर पर्दा बंद, फिर कहते हैं जैसे हम बोलते हैं ना वंस मोर, वो बोलते हैं ओ गोपाला, फिर खोल देते हैं, कह रहे लो दर्शन कर लो। तो इस तरह से ठाकुर जी अपनी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। तो एक्चुअली श्रीनाथ जी जो है वो निकुंज नायक भी कहलाते हैं, क्योंकि वो कुंज में खड़े और गोपियां उनके आसपास हैं। और कहते हैं कि एक बार वल्लभाचार्य जी शास्त्रार्थ करने के लिए विद्यानगर देश में गए थे, दक्षिण भारत में, और उन्होंने अपने शास्त्रार्थ में राजा कृष्ण देव राय के समकक्ष कई सारे शास्त्रियों को हरा दिया था। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं से पूरा तोल दिया, जितनी वल्लभाचार्य जी की वेट था उतना उनको वेट के अनुसार सोना दिया, और उन्हें सारा सोना, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, खुद अपने लिए कुछ ना रखे, जो है वो सब भक्तों में बांट दे, और अपने लिए जो जरूरत का उतना रखे। तो उन्होंने भी सारा कुछ भक्तों में बांट दिया और सिर्फ 7 सिक्के रखे, और उन 7 सिक्कों से भगवान की पोशाक ड्रेस बनाई। और आज भी भगवान को वो पोशाक कभी कभी सोने के जो उन्होंने बनाई थी वल्लभ आचार्य जी की, भगवान को ऑफर की जाती है। तो इस तरह से भगवान प्रेम आपको वितरित कर रहे हैं। कहते हैं वहां पर 829 दुकानें हैं आसपास में, और 6000 एकड़ जमीन जो है वो गोपाल जी की है, और 500 गाय हैं उनकी गौशाला में, बहुत सुंदर गौशाला है, मैंने तो वीडियो में देखा है, वैसे हम देख सकते हैं। और गोपाल जी को राधा नाथ के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि राधा के नाथ हैं, तो कई नाम हो गए, गोपाल, श्रीनाथ, राधा नाथ। और नाथ द्वार का मतलब है कि संसार के जितने भी अनाथ हैं वो उस द्वार के जरिए अपने स्वामी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए स्थान का नाम नाथ द्वारा कहलाता है। तो हम सब भक्त जाएंगे और भगवान के सुंदर दर्शन करेंगे। और जो पीछे भगवान के यहाँ पर एक पत्थर बनाया गया है वो भगवान का गोवर्धन पर्वत के बारे में वर्णन कर रहा है कि पीछे भगवान का गोवर्धन पर्वत है। तो इस तरह से गोपाल जी जो हैं वो सबको बुला रहे हैं, कह रहे हैं उत्प्रेक्षित हस्त कमलम से आओ आओ आओ, और क्या लेके जाओ?
कृष्ण प्रेम
लेके जाओ। ठीक है ना? तो अगर जिसे कृष्ण प्रेम चाहिए वहां जाकर के ऐसा ना सोचें कि उदयपुर तो आए हैं राजस्थान में, कुछ भी कर सकते हैं, पिकनिक स्पॉट है उदयपुर, पर हम उदयपुर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसमें? उस नाथ द्वार के अंदर श्रीनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। तो भक्त जो है वो वृंदावन गोवर्धन से अभिन्न बताया गया उस स्थान को, और स्वयं भगवान खुद अपनी इच्छा से चल करके गए, तो हमें उनको ध्यान पूर्वक अपने हृदय में बसाना है। दर्शन करने का कई बार मौका मिलेगा, 3 दिन में हम दर्शन कई बार कर सकते हैं। मंगला आरती 5:30 बजे होती है भगवान की, तो सब मंगला आरती जाएं। मंगला आरती में बहुत भीड़ रहती है, भगवान के कभी आज तक फंड की कमी नहीं हुई है। एक तो उसमें बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, अंबानी जुड़े हुए हैं, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ घी के कुएं देखना, घी के कुएं हैं वहाँ पे, एक कुओं के अंदर 5 कुएं हैं, वेल ऑफ घी, उसमें जितने भी लोग दान देते हैं वो घी दान देते हैं भगवान को, और घी वो डाल देते हैं कुएं में, जब जरूरत होती है तो पुजारी जो कुक्स जो है वो घी बाल्टियां डाल के घी को निकालते हैं वेल से, और फिर कढ़ाई में डालते हैं, और फिर बड़ी कढ़ाई में भगवान के लिए भोग लगता है। और हर एक व्यक्ति जो भी आता है, 20,000 लोग आते हैं, उन 20,000 लोगों को प्रसाद भी वितरित किया जाता है मंदिर की तरफ से। तो पुष्टि मार्ग जो है वो गोपाल जी की सेवा बताता है, इसीलिए लड्डू गोपाल सेवा शुरू हुई, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय पुष्टि मार्ग ने शुरू करी, जिसमें राधा रानी नहीं होती है, परंतु वो ये नहीं जानते गोपाल जी का एक रूप निकुंज नायक श्रीनाथ भी है, तो इसलिए राधा रानी को साथ में पूजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको राधा रानी दिखाई नहीं देंगी, तो कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे राधा रानी क्यों नहीं है यहाँ पर, तो राधा रानी तो भगवान की शक्ति है जो भगवान के अंदर ही है, क्योंकि ये मार्ग ये बताता है कि हमें कृष्ण गोपाल से कनेक्ट होना, इसलिए वहां पर गोपाल विग्रह ही है, खाली राधा रानी का विग्रह स्थापित नहीं किया गया वहां पर। छोटे विग्रह है, उनकी थोड़ी में जो है वो चिन्ह देखने योग्य है हेरा, और भगवान जो है वो कमर पे हाथ रखकर सबको बुला रहे हैं। तो यही है इस कथा के अंदर कि सब अपने जीवन के जो हम कई जन्मों से यात्राएं कर रहे हैं, बार बार माता के गर्भ में आ रहे हैं, जब भूल गए हैं भगवान कृष्ण को, उनको याद रखने का, अपने अपराधों को दूर करने का, प्रेम प्राप्त करने का बस यही एक मार्ग है जो हमें मिल गया है बड़ी सरलता से भक्तों के माध्यम से, तो इसको जाने ना दें। कई बार एक व्यक्त पूछ रहे थे प्रश्न कुछ दिन पहले, अभी मैं वृंदावन में या मायापुर में कहीं किसी ने पूछा था कि प्रभु जी हम जो हैं माला भी ले लिए, माला भी करने लगे, भक्त भी बन गए, दीक्षा भी ले ली, लेकिन ऐसा लगता है कि भक्ति का आनंद हमें अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो मैंने एक महाराज का कहीं कथा सुनी थी, तो उसी से उनको उदाहरण देते हुए कहा कि जो बैंक होता है ना, उसमें आप पैसा रखते रहिए रखते रहिए रखते रहिए, क्या होता है पैसा रखने के बाद निकालेंगे कैसे पैसे को, निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, चेकबुक या फिर एटीएम। अब एटीएम नहीं हो और चेकबुक भी ना हो तो क्या पैसा निकाल सकते हैं? तो हम जितनी यात्राएं करते हैं इससे हमें भक्ति की सुकृति मिलती है, पर हम इसे निकाल क्यों नहीं पाते, क्योंकि हमारी चेकबुक मिसिंग है।